ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। वर्तमान सरकार कुछ करने और परिवर्तन ला करके ही रहने के संकल्प के साथ आई है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। तनहू के आम्बू खैरेनी में हुए बस दुर्घटना में मौत होने वाले 27 यात्रुओं का शव भेजा गया भारत। डेंगू रोग के संक्रमण 75 जिलों में पहुंच चुका है, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय का पुष्टि। और रूस के जेल में कैदियों के विद्रोह के दौरान 4 जेल कर्मियों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि अभी के सरकार से देश विकास के लिए आशा और विश्वास भी करने का आग्रह किया है। आज फिनिक्स कॉलेज और यूनिवर्सल कॉलेज द्वारा आयोजित काठमांडू यूथ कॉन्क्लेव 2024 में युवा सहभागी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि वर्तमान सरकार कुछ करने और परिवर्तन ला करके ही रहने के संकल्प के साथ आई है। प्रधानमंत्री ओली ने युवा ही देश निर्माण के संपूर्ण शक्ति है, इसलिए अनुकूल वातावरण होने पर विदेश में रहे नेपाली युवा भी स्वदेश वापस आने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री ओली ने सामाजिक विकृति अंत के लिए सभी व्यक्ति और समाज को ही आचरण युक्त होने पर जोर दी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समक्ष दांग के नेता, सांसद और स्थानीय तहों के जनप्रतिनिधि एवं निजी क्षेत्रों के अगुआ ने तुलसीपुर के टरी गांव विमानस्थल स्तरोन्नति सहित जिला के समग्र विकास के बारे में मांग पत्र सौंपा है। आज प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुए भेंट में नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल, संघीय सांसदों दीपक गिरी और मेनका पोखरेल, एमाले केंद्रीय सदस्य घनश्याम पांडे, तुलसीपुर उपमहानगर पालिका के प्रमुख टीकाराम खड़का लगायतों ने विमानस्थल के स्तरोन्नति सहित जिला के समग्र आर्थिक और भौतिक विकास के बारे में मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र लेते हुए प्रधानमंत्री ओली ने विमानस्थल स्तरोन्नति के साथ ही लम्ही घोराही तुलसीपुर सड़क विस्तार में सरकार द्वारा ध्यान देने की प्रतिबद्धता जताई। नेपाल के आकस्मिक भ्रमण पर रहे भारत की युवा तथा खेलकूद राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से को तनहू की आम्बू खैरेनी गांव पालिका 2 एना पहाड़ में भारतीय यात्रुवाहक बस दुर्घटनाग्रस्त होने से हुए क्षति उद्धार तथा घायलों के इलाज के बारे में सुरक्षा निकाय के अधिकारी ने जानकारी दी। गृहमंत्री रमेश लेखक के उपस्थिति में गृह मंत्रालय में सुरक्षा निकाय के अधिकारी ने हादसे के बारे में आज जानकारी कराई है। गृहमंत्री लेखक ने कहा कि दुर्घटना के बारे में जानकारी मिलते ही उद्धारकर्मी परिचालन किया गया और घायलों को जल्द उद्धार करके अस्पताल पहुंचाया गया है। इससे पहले गृहमंत्री लेखक और राज्य मंत्री खड़से ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में इलाज करा रहे 16 घायलों के अवस्था के बारे में जानकारी लिया। इसी बीच बस हादसे में जान गुमाए 27 यात्रुओं को चितवन स्थित भरतपुर अस्पताल में शव परीक्षण के पश्चात भारत भेजा गया है। भारतीय सेना के विशेष विमान से मृतक में से 25 शव महाराष्ट्र भेजा गया और अन्य 2 शव स्थल मार्ग से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर भेजा गया। ये जानकारी चितवन के प्रमुख जिला अधिकारी इंद्रदेव यादव ने दी। बता दें कि हादसे में जान गंवाने वाले यात्रुओं का शव लेने के लिए भारतीय सेना के विशेष विमान आज दोपहर चितवन पहुंचा था। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह ने कहा कि बागमती नदी सफा रखने और जुगाने के लिए अपने क्षेत्रों से सभी को लगना होगा। आज ललितपुर में नेपाल नदी संरक्षण संस्था तथा फ्रेंड्स क्लब कुपंडोल के संयुक्त रूप में आयोजित महाजल यात्रा के समापन कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री सिंह ने कहा कि शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए इसका असर बागमती नदी में भी पड़ा है और अब इससे पड़ने वाले दीर्घकालीन असर समाधान करने के विषय पर सभी को सोचना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने कहा कि पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक संपदा का संरक्षण करते हुए भावी पुस्ता को हस्तांतरण करना हमारी जिम्मेदारी है। भक्तपुर विकास सहयोग संघ के 30वां वार्षिक साधारण सभा तथा 30वें खोपरिंग सम्मान कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति भंडारी ने कहा कि मूर्त तथा अमूर्त कला संपदा से सजे हुए सांस्कृतिक रूप में संरक्षित ऐतिहासिक दरबार क्षेत्र और यहां के सांस्कृतिक संपदा के कारण भक्तपुर जीवित शहर के रूप में परिचित है। पूर्व राष्ट्रपति भंडारी ने यह भी कहा कि भक्तपुर विकास सहयोग संघ ने संपदा संरक्षण के अतिरिक्त सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किया है। रेडियो नेपाल से समाचार प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी के केंद्रीय पदाधिकारी के निष्कर्ष निकालने के लिए केंद्रीय कमेटी की पूर्ण बैठक कल होगी। पार्टी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष उप महासचिव कोषाध्यक्ष सहित 18 पदाधिकारियों का सीट रिक्त है, इसलिए पूर्णता देने के लिए काठमांडू में बैठक होने जा रही है। ये जानकारी केंद्रीय सदस्य सोम प्रसाद पांडे ने दी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने ने सहकारी प्रकरण में खुद संलग्न न होने का कागजात छानबीन समिति को सौंपा है। आज भरतपुर विमानस्थल पर संचारकर्मियों के साथ के बातचीत में सभापति लामिछाने ने गोरखा मीडिया के साथ संलग्न के बारे में लगे आरोप पुष्टि न होने का प्रमाण सौंपी है। डेंगू रोग के संक्रमण 75 जिलों में पहुंच चुकी है, ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। हुमला और मुस्तांग बाहेक सभी जिलों में डेंगू रोग का संक्रमण देखा गया है। ये जानकारी मंत्रालय अंतर्गत के इपिडीमियोलॉजी तथा सरुआ रोग नियंत्रण महाशाखा के कीटजन्य रोग शाखा के प्रमुख डॉक्टर गोकर्ण प्रसाद दहाल ने दी। कैलाली में सांप के काटने से एक ही घर के दो बच्चियों की मौत हो गई, तो वहीं एक की अवस्था चिंताजनक है। विषालु सांप के काटने से गौरीगंगा नगर पालिका वार्ड नंबर 7 की 4 वर्षीय मीता घर्तीमगर और 7 वर्षीय काजल घर्तीमगर की मौत की जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय के DSP कविंद्र बोहरा ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस की एक जेल में कैदियों के विद्रोह करने और बंधक बनाने की कोशिश के बाद 4 जेल कर्मियों की मौत हो गई है। ये घटना दक्षिण पश्चिमी वोल्गोग्राद क्षेत्र में स्थित LK-19 सुरोबिकिनो जेल में हुई। जेल कर्मियों की मौत के बाद चाकू लहरा रहे कैदियों ने खुद को इस्लामिक स्टेट IS का आतंकी होने का दावा किया है और जेल परिसर पर कब्जा करने की बात कही। इसके बाद विशेष सुरक्षा बलों को जेल में भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने सभी बंदियों को रिहा कर लिया है और हमलावरों को मार दिया गया है। बाद में अधिकारियों ने 4 जेल कर्मियों के भी मारे जाने की पुष्टि की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक अपुष्ट तस्वीर में एक कैदी को खून से लथपथ गार्ड के ऊपर चाकू ताने देखा जा सकता है। रूस के रोस्बग बारगाडियो नेशनल गार्ड ने कहा कि बचाव अभियान के दौरान स्नाइपर्स ने 4 हमलावरों को गोली मार दी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्तमान सरकार कुछ करने और परिवर्तन ला करके ही रहने के संकल्प के साथ आई है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। तनहू के आम्बू खैरेनी में हुए बस दुर्घटना में मौत होने वाले 27 यात्रियों का शव भेजा गया भारत। डेंगू रोग के संक्रमण 75 जिलों में पहुंच चुका है, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय का पुष्टि। और रूस के जेल में कैदियों के विद्रोह के दौरान 4 जेल कर्मियों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।